भगवद्गीता का जो 13वां अध्याय है उसके पहले 7 श्लोकों पे हमने कल चर्चा की थी, तो आज हम 8वें श्लोक से शुरुआत करते हैं। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दो विषयों पे भगवान ने 2 से 7वें श्लोक पर चर्चा की है। 6 विषयों पर चर्चा होने वाली है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ पे भी चर्चा हो चुकी है, तो अभी 3रे विषय पर चर्चा चालू हो जाएगी, वो है ज्ञान। तो अभी यह जो एक ही प्रसंग है पूरे भगवद्गीता में, जब प्रभुपाद जी 5 श्लोकों का तात्पर्य एक साथ में देते हैं, कई जगह पे 3 श्लोकों का, 4 श्लोकों का, 16 अध्याय में देखिए 16:1-3 तीनों जो है वो दैवी गुणों के बारे में वर्णन आता है, तो साथ में इसलिए 3 श्लोकों का तात्पर्य एक साथ में देते हैं। उसमें से समाधि का वर्णन जो करते हैं श्लोक वो 20 से 24 तक है, वो भी 5 श्लोक है, पर वास्तव में वे 4.5 श्लोक है, उनको प्रभुपाद जी 5 श्लोक के रूप में बोलते हैं, कल बताया था। वो चौथा श्लोक जो है, 5वां श्लोक जो है वो आधा ही प्रभुपाद वहां पे लेते हैं, फिर उसके बाद में 25वां श्लोक जो है वह एक्चुअली वह वहां पे पूरा आता है, एक्चुअली वो 3.5 श्लोक है, सॉरी वो 4.5 श्लोक नहीं, 3.5 श्लोक है वो, सनिश्चय न योग तो योग निर्वण चेत सा, वो अगले श्लोक में आता है। तो यहाँ पे एक ही जगह पे 5 श्लोकों का तात्पर्य साथ में दे रहे हैं, और यह विचार की दृष्टि से बिल्कुल युक्त है, क्योंकि 5वें श्लोक के अंत में भगवान बोलेंगे कि ये एक श्रृंखला बता रहे हैं, एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम, तो सारा एक ही विचारों का वर्णन चल रहा है, एक ही चीज का वर्णन चल रहा है। तो हम 5वें श्लोक को एक साथ बोल दोहराते हैं, फिर उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम् शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तेरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु अरतिर्जनसंसदि आध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतोऽन्यथा। तो एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम्, इसको ज्ञान कहते हैं, और इसके अलावा जो भी है अज्ञानम् यदतोऽन्यथा, उसके अलावा ये सब अज्ञान है। अब इसके पहले भगवान ने ज्ञान की परिभाषा संक्षिप्त में दी थी, इसे याद है क्या परिभाषा थी वो? क्षेत्र और क्षेत्र के को जानता है वह वास्तव में ज्ञान, वह क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान के बारे में जो ज्ञान है वह वास्तव में ज्ञान कहलाता है। तो अभी क्षेत्र और क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, वो प्राप्त कैसे करते हैं ज्ञान, तो उसके लिए विधि है, और वो जो विधि है कि हमें हमारा अंतरंग चेतना का परिवर्तन करना है, और चेतना का परिवर्तन करना मतलब कि वह सद्गुण जो है वह विकसित करना। जब सद्गुण विकसित होते हैं तो फिर वो ज्ञान आध्यात्मिक चेतना प्रगत होने के कारण, विकसित होने के कारण वो प्रकट हो जाता है ज्ञान। मतलब कैसे है, यह जो ज्ञान है यह केवल जानकारी नहीं है, यह एक जागरण है। जैसे इसका उदाहरण देना है तो अगर कोई चित्र है, कोई चित्रकार को चित्र बनाता है, तो अभी चित्र को देख के किसी को लगा अच्छा ये अच्छा चित्र है, पर जो व्यक्ति चित्र के अभी जो चित्र होते हैं उसको समझना भी एक कला होती है। आपको पता है अभी कुछ लोग अभी मूवीज होते हैं, तो जो मूवीज होते हैं तो कुछ लोगों का आजीवन पेशा क्या होता है, सिर्फ मूवीज देखने का और उसके उसका रिव्यू न्यूज़पेपर में लिखने का। और वो लोगों को वो मूवीज देखने के लिए लोग न्यूज़पेपर वाले पैसा देते हैं और लोग जिंदगी भर अपना पैसा ऐसे ही कमा लेते हैं, उनको और कोई नौकरी करनी नहीं। क्या करना है, सिर्फ मूवी देखना, मूवी के बारे में लिखना है। तो बोले इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है उसके बारे में, पर ऐसे नहीं है। क्या है, वो व्यक्ति जब वो अगर कोई चित्रपट देखता है तो फिर उसको वहां पे कलाकार ने कैसे कला किया है, कैसे नृत्य किया है, कैसे एक्टिंग किया है, डायरेक्शन कैसे है, वो सबका जब ज्ञान होता है उसके अनुसार फिर वो जो उसको क्रिटिक कहते हैं, आर्ट क्रिटिक, तो ये जो व्यक्ति होता है फिर उसको पूरा ज्ञान होके फिर वो बोलता है। बाकी सब लोग जाएंगे उसे मानो यहाँ पे एक्शन ऐसा था, ऐसा डांस था, ये था, ऐसा था, हो गया खत्म। पर वो जो अभी वो सारा जो है ये सब भौतिक ही है, पर भौतिक चीजों में भी फर्क होता है। तो जो हमारे वैदिक शास्त्रों में भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिखा है और नाट्य शास्त्र में वो बताया कि जो नाटक होता है वह वास्तव में रसिक लोगों के मन में रस उत्पन्न करेगा। सबके लोगों में रस उत्पन्न करेगा आवश्यक नहीं है, रसिक जब प्रेक्षकगण होंगे तब उसमें रस उत्पन्न होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भौतिक चीज भी अगर रस के दृष्टि समझनी है तो उसके लिए सिर्फ जानकारी अनुभव नहीं है, उसको क्या पूरी समझ चाहिए, वो एक प्रकार की अलग चेतना चाहिए जिससे कि अच्छा ये संगीत ऐसा है या ये नृत्य ऐसा है या ये ऐसा होना चाहिए। तो उसी तरह से अगर हम देखते हैं तो आध्यात्मिक स्तर पे जब हमको आत्मा और भगवान समझना है तो एक प्रकार की चेतना को जागृत करना है। तो इसीलिए ज्ञान ये जानकारी की बात नहीं है, ये ज्ञान ये जागृति की बात है और वो जागृति होने के लिए सद्गुणों का विकास करना आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पे भगवान जब ज्ञान बता रहे हैं तो वे गुणों की श्रृंखला बता रहे हैं, वो 20 गुण बता रहे हैं यहाँ पे। और ये जो 20 गुण हैं इनकी चर्चा प्रभुपाद जी ईशोपनिषद में विस्तारित रूप से करते हैं। ईशोपनिषद में 9वां, 10वां, 11वां जो श्लोक है वह विद्या और अविद्या की तुलना होती है उसमें। तो उसमें 10वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी यही यहाँ पे जो एक एक गुण बताया गया है उसका प्रभुपाद जी पूरा एक 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 दो तीन वाक्यों में भाषांतर करते हैं एक शब्द का और फिर उसका वर्णन करते हैं वो। तो यहाँ पे हम ये सारे 20 गुणों में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वही बहुत लंबा प्रवचन हो जाएगा। हम संक्षिप्त में ये गुणों में क्या बताया जा रहा है देखेंगे। तो सबसे पहले भगवान बोलते हैं अमानित्व। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है यहाँ पे भी श्रृंखला आती है वहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत स्पष्ट होता है। क्या चाहिए, अगर ये सब गुण है तो इन एक एक गुण का वहां पे वर्णन आता है। 16वें अध्याय के भी पहले तीन श्लोकों में ऐसे ही वर्णन है, फिर 10वें अध्याय में भी जब चौथे पांचवें चौथे श्लोक में गुणों का वर्णन आता है कुछ वहां पे भी ऐसे प्रभुपाद जी का पॉइंट बाय पॉइंट वर्णन होता है। तो अमानित्व और अदम्यत्व, तो यह जो है पहले दो बता रहे हैं। इसको मैं रविवार के प्रवचन में बताया था दंभ और मान में क्या फर्क है, किसको याद है दंभ और मान? वहां पर मैं 16 अध्याय के श्लोक के आधार पर बता रहा था दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च।
मान मतलब अहंकार होता है लेकिन अपेक्षा करता है दूसरे से कि स्तुति हो,
और तमो मतलब
दंभ मतलब उसमें अहंकार है।
थोड़ा सा टेक्निकल है पर फर्क क्या है, भगवान दो अलग बोलते हैं। दंभ का मतलब क्या है कि जो गुण मुझ में नहीं है उसके लिए भी मुझे आदर चाहिए, मैं दिखावा कर रहा हूं और फिर उसके लिए आदर चाहूं। तो प्रभुपाद जी इसका ईशोपनिषद में भाषांतर करते हैं कि व्यक्ति खुद को बहुत धार्मिक दिखलाता है दुनिया के लिए ताकि धार्मिक होने का धर्मात्मा होने का आदर प्राप्त करे। तो मान मतलब क्या कि अगर मुझ में कोई गुण है उसके लिए भी आदर मांगना वो उचित बात नहीं है। कोई आदर देगा तो बात अलग है पर उसके अपेक्षा करना उसकी मांग करना ही उचित नहीं है। पर दंभ मतलब क्या कि जो गुण है ही नहीं उसके लिए मैं आदर मांगता हूं। तो अगर मैं टेंपल में ब्रह्मचारी को याद है मैं टेंपल का प्रेसिडेंट हूं ये प्रणाम करूं तो ये क्या है, ये बिल्कुल गलत है। तो अदम्यत्व, कोई प्रेसिडेंट होगा तो उसको भी नहीं बोला जाएगा प्रेसिडेंट प्रणाम करो मुझे, वास्तव में उचित नहीं है, नम्रता होनी चाहिए। पर क्या है अमानित्व यह गुण है फिर भी मांगना नहीं है, अधर्म मतलब गुण है नहीं फिर भी दिखावा करके फिर आदर की मांग करना है। तो प्रभुपाद जी इस बात तात्पर्य में बोलते हैं कि नम्रता का अर्थ क्या है। कहते हैं कि नम्रता का अर्थ है कि हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉट बी एंशियस टू हैव द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा आदर मिलने से जो संतुष्टि होती है उसके लिए चिंतित नहीं होना। तो अभी ये बड़ा विचित्र लगता है थोड़ा, तो इसको अभी क्या है हम देखेंगे भक्तों की संस्कृति में जो भक्त कल्चर में जो होता है काफी आदर मिलता है। हम अगर किसी और संस्थान में होते हैं तो कोई कमरे में आते कोई प्रणाम करने वाले कोई देखेगा भी नहीं तो आदर तो मिलता है। तो फिर क्या है नम्रता, मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई कहेगा कि अरे मुझे नम्र रहना चाहिए तो आप मुझे प्रणाम मत करो, वह नम्रता नहीं है। तो टू बी हम्बल मीन्स टू एक्सेप्ट ऑनर बट नॉट टू एक्सपेक्ट ऑनर। हम जब क्या है कि भक्तों की भक्ति की संस्कृति ऐसी है कि एक दूसरे का आदर करते हैं तो हम वो आदर स्वीकार करते हैं पर उसकी मांग नहीं करते, उसकी अपेक्षा नहीं करते और उसमें आनंद नहीं लेते कि दूसरे लोग मेरा आदर कर रहे हैं। तो भक्त जो होते हैं वह सेवा का भाव रखते हैं हमेशा कि मैं किस तरह से कहां सेवा कर सकता हूं, और अब सेवा के आदान प्रदान के समय कोई आदर देता है तो वो आदर स्वीकार करते हैं। आदर से दौड़ना नहीं है हमें पर आदर की ओर भी दौड़ना नहीं है, हमें सेवा पे केंद्रित रहना। इसीलिए प्रभुपाद जी जो परिभाषा देते हैं वो क्या है कि जो चिंता वो आदर के संतुष्टि जो मिलती है, कोई आदर करता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो वो संतुष्टि के लिए उद्विग्न नहीं रहना, विचलित नहीं रहना, उत्सुक नहीं रहना, चिंतित नहीं रहना, तो अमानित्व अदम्भित्व। तो इस तरह से अभी ये क्या है नम्रता जो है वह ज्ञान की शुरुआत है। तो 20 जो गुण बताए गए उसमें पहले नम्रता बताई है, क्योंकि नम्रता जब होती है तब हम स्वीकार करते हैं कि मुझे पता नहीं है, मुझे जानना चाहिए। जो व्यक्ति अहंकारी होता है सोचता है कि मुझे सब कुछ पता है, तो जब नम्रता होती है तो हम ज्ञान की खोज करते हैं। तो इसलिए जो ज्ञान के ज्ञान का जो आगर है, ज्ञान का जो महल है, उसका दरवाजा जो खुलता है वो नम्रता से खुलता है। जो व्यक्ति नम्र नहीं है वो ज्ञान के आगर के हमेशा बाहर रहता है, वो उसके अंदर पहुंच नहीं सकता है, उसको खुद के ही जो अभिज्ञान है उस पर गर्व रहता है। केन उपनिषद बताया गया है कि ही हु थिंक्स ही नोज डज नॉट नो एंड ही हु नोज थिंक्स दैट ही डज नॉट नो। जो व्यक्ति जान सोचता है कि मैं जानता हूं वो जानता नहीं है, और जो व्यक्ति जानता है वो सोचता है कि मैं जानता नहीं हूं। क्या मतलब है इसका कि कोई व्यक्ति अगर सागर के तट में है और वो कहता है उसे सागर के अंदर गया है नहीं, वो रोज देखा है सागर का, पता है मुझे रोज देखता हूं मैं उसको, उसमें क्या बड़ी बात है। तो वास्तव में सागर कितना विशाल है, उसके अंदर क्या क्या है उसको कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ ऊपर से देखा था सागर को जानता हूं मैं। तो जो सोचता है जो कहता है कि मैं जानता हूं वह जानता नहीं है, पर जो व्यक्ति सागर में डूब गया सागर के कूद के सागर की जो गहराई है उसको नामने का प्रयास किया है, बहुत अंदर तक गया है और काफी अंदर तक जाने के बाद उसको सागर के बारे में बहुत कुछ पता है, पर जितना उसको पता होता है उससे वो पता है कि और कितना सारा है जो मुझे पता नहीं है। तो जब हम सागर की विशालता को समझते हैं तब हमारा ज्ञान कितना भी विशाल क्यों ना हो हम समझते हैं कि मुझे पता नहीं है। तो ठीक उसी तरह से क्या है जो व्यक्ति भगवान के बारे में कुछ जानते नहीं, हाँ कृष्ण मैं तो जानता हूँ कृष्ण है, महाभारत में होते हैं, भागवत में होते हैं, टीवी पे देखा है, मैं सब कहानियां बताए, पर जो आचार्य भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं कृष्ण की समझ में बहुत घूर जाते हैं, वो क्या कहते हैं कि वास्तव में ऐसे मुचुकुंद महाराज कहते हैं कि हे प्रभु ये सागर में जो आसमान में तारे हैं उसको कोई गिन सकता है पर आपके जो गुण है वो कोई गिन नहीं सकता है। तो ये क्या है नम्रता है। तो नम्रता से हम भगवान को समझ सकते हैं। अहिंसा शांतिर आर्जवम। तो अभी यहां पे जो सब गुण बताए जा रहे हैं हम अधिकांश रूप से जो गुण है सत्वगुण है, सत्वगुण के लक्षण है ये। क्यों क्या है ये जो अध्याय है ये भगवद्गीता के आखिरी 6 अध्याय आ रहा है वो ज्ञान मार्ग के बारे में बता रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो गुण बता रहे सत्व कैसे होता है, प्रकृति 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, और उसके बाद में शुद्ध सत्व होता है। तो जब तक सत्वगुण में व्यक्ति नहीं आता है तब तक उसको ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ज्ञान मार्ग में भी ये बताया गया है कि अगर आपको आध्यात्म प्राप्त करना है तो सबसे पहले संन्यास ले लो। तो संन्यास लेना मतलब कि आप भौतिक सब आसक्तियों से मुक्त हो रहे हो, तो उसके बाद में आप सत्वगुण में आ रहे हो, फिर ब्रह्म की ओर चले जाओगे आप। तो अहिंसा, शांति, आर्जव, ये सब जो है यह सत्वगुण के लक्षण है। तो आप इसकी सब चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें समय कम पड़ेगा, मैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करता हूँ। तो इसमें हम दो विरुद्ध गुण जैसे देखेंगे, एक है आखिरी में आता है विविक्त देश सेवित्व अर्तिर जन संसदी। विविक्त देश सेवित्व मतलब अकेले में रहना, और अर्तिर विक जन संसदी, साधारण साधारण जो लोग हैं उनसे ज्यादा घुल मिलना नहीं, उनसे दूर रहना। यही हम चैतन्य महापुरुष भी बताते हैं, ग्राम्य वार्ता न करिवे ग्राम्य वार्ता न सुनिवे। क्योंकि जन साधारण लोग होते हैं वो भौतिकवादी रहते हैं और वो भौतिक चीजों के बारे में ही चर्चा करते रहते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों से ज्यादा मिलना ये उचित नहीं है। थोड़ी बहुत जानकारी करने के लिए, प्रचार करने के लिए, जो भी आवश्यक व्यवहार है उसके लिए मिल सकते हैं, उससे अधिक जो मिलते हैं ये जिन लोगों का हम संग करते हैं उनके विचारों का, उनकी वासनाओं का, उनकी चिंताओं का हम पे प्रभाव होता है, और उस प्रकार से हमारे भी विचार, चिंता, वासनाएं होने लगती हैं। तो इसलिए उस पर ज्यादा उसे संग नहीं करना। पर साथ साथ इसी श्लोक की श्रृंखला में क्या बताया गया, पहले बताया आचार्योपासनम, मतलब क्या कि ऐसे नहीं, अगर तो मैं विविक्त देश में अकेला रहूंगा तो मैं गुरु से भी दूर रहकर अकेला रहूंगा, ऐसे बात नहीं है। आचार्य उपासना, हमें आचार्य की उपासना करें, न केवल आचार्य का स्वीकार करना है, न केवल आचार्य के संग में रहना, पर भी उपासना करनी है। तो क्या है, वास्तव में कोई कहेगा मैं अकेला रहना चाहता हूँ, कोई भी अकेला नहीं सकता, वी आर अलोन विद आवर माइंड। हम जब अकेले हैं मतलब हमारे मन के साथ अकेले हैं, और हमारा मन क्या है, हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, तो बड़े बेरहमी से हमें वो घायल कर देगा। इसीलिए हमें, हम ऐसे नहीं कि हमेशा सबके साथ ही रहना है, सेवा के अनुसार अगर हमें जो भी कार्य करना है वो करना है, पर महत्वपूर्ण क्या है कि जो यहाँ पे ज्ञान मार्ग को बताया गया कि उनको भी आचार्य उपासना आवश्यक है। जब आचार्य के साथ रहते हैं हम, आचार्य सीखते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो फिर जो परिस्थिति के अनुसार जो भी अनुकूल सेवा होगी वो हम कर सकते हैं। तो कुछ सेवा के लिए सब भक्तों के साथ रहना है, सेवा करनी है, अगर संकीर्तन करना है, प्रचार करना है, या पर कुछ कुछ सेवाएं होती है, अगर शास्त्र का अध्ययन करना है, चाणक्य पंडित अगर अध्ययन करना है तो आपको अकेले करना है। तो क्या है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रकार से हम कार्य करना होता है, पर महत्वपूर्ण भाव क्या है कि आचार्य उपासना जब करते हैं तो फिर हम जो भी सेवा के लिए अनुकूल है बाद में कर पाएंगे। फिर आगे बताते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। मैं सबकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, कुछ कुछ चर्चा कर रहा हूं। इसमें क्या है कि इसका उल्लेख भगवद्गीता में एक और बार पहले आया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चार ये जो दुख है बहुत जगत के, इसका वर्णन 3 बार आता है भगवद्गीता में, यह 2री बार आया है। इसके पहले 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में आया था, 29वें श्लोक में, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य दंतिये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम आध्यात्म कर्म चाखिलम। जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण, मृत्यु और बुढ़ापा, इस मोक्षाय, इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ लोग मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं। और 14वें अध्याय में भी भगवान जब 3 गुणों के बारे में बोलेंगे तब ये बोलेंगे कि महत्वपूर्ण है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, यह इस भौतिक जगत के दुखालय होने का प्रधान लक्षण है। कभी क्या होता है कि किसी को कोई बीमारी होती है तो वो बीमारी के लिए पेन किलर ले लेता है, तो क्या होता है वो पेन किलर से वो बीमारी कुछ दर्द लगता नहीं है। तो अभी बहुत दर्द हो रहा है तो पेन किलर लेना ठीक है, पर अगर पेन किलर लेने का ये उद्देश्य है कि वो मैं बीमार हुई भूल जाऊं, तो फिर क्या होता है, वो अंदर से बीमारी और उसको खराब कर रही है और अंदर से पूरा शरीर को उद्वस्त कर देगी और एक मृत्यु हो जाएगी उस व्यक्ति की और कुछ करेगा ही नहीं. तो द पेन किलर शुड कॉम्प्लीमेंट द क्योर, नॉट नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द क्योर. तो जो पेन किलर है वो दवाई जब ले रहा है तभी साथ साथ अगर बहुत दर्द है तो सहन करने के लिए पेन किलर ले सकते हैं. पर व्यक्ति सोचता है कि पेन किलर ले लूंगा और दवाई की जरूरत ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अंदर से वो पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा. तो ठीक उस तरह से तो हम जब कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि यह है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भौतिक जगत दुखाल है, उसका स्मरण करना चाहिए. तो आधुनिक संस्कृति क्या है कि ये इन सबको ढक देती है, इन सबको ढक देती है ताकि लोगों को पता ही नहीं चले ऐसे कुछ हो रहा है. तो चाइना में उन्होंने एक बहुत बड़ा रेल बनाया था, तो एक बड़ी खाई थी और खाई के खिलाफ खाई के सामने उन्होंने एक रेल बना दिया और वह उन्होंने बताया कि हमारे तंत्र ज्ञान का यह बड़ा यश था. बहुत ही हाई स्पीड ट्रेन था वो, और वो एक बड़ा कई मीलों का ब्रिज था, बहुत लंबा ब्रिज, से बहुत हाई स्पीड ट्रेन जाती थी. उन्होंने कहा कि अभी हमारा तंत्र ज्ञान इतना बढ़ गया है कि ऐसा ट्रेन जो कभी बना नहीं सकते हमने बना दिया है. तो क्या हुआ, उसी ब्रिज पे एक्सीडेंट हो गया, तो दो ट्रेन आ गए, उनका टक्कर हो गया, तो दोनों ट्रेन वो पहाड़ से नीचे गिर गई और नीचे खाई में गई, गिर गई. तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने अपना पूरा फायर ब्रिगेड और सारा फोर्स भेजा कि जो भी वो ट्रेन नीचे गिर गए वहीं पे खड्डा खनो, उसको डूब करो, उसको वहीं पे गाड़ दो, किसी को पता भी नहीं चला जाए एक्सीडेंट हो गया. तो क्या है आजकल, अभी इंटरनेट होता है, फेसबुक होता है, ट्विटर होता है, तो उसमें क्या है, जो लोग ऊपर से जा रहे थे तो सब कैमरा से फोटो निकाल लिया, सबको दिखा दिया. तो क्या है ये पॉइंट क्या है, भौतिक जगत में सब कवर अप कर देते हैं कि जो भी अगर दुख हो रहा है, जो भी व्याधि है, उसको दिखाने का ही नहीं. कभी कभी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो हॉस्पिटल बाहर से कोई फाइव स्टार होटल जैसे ही लगता है, तो इसमें अंदर कोई दुखी है ऐसा लगता ही नहीं. तो ऐसे नहीं है कि हॉस्पिटल सबको दुखी रखना चाहिए जानबूझ के, पर पॉइंट है कि जब हम कवर कर देते सबको, ढक देते सत्य, तो फिर क्या होता है, वो सत्य के निवारण के लिए, सत्य के हल के लिए कोई प्रयास ही नहीं करता है. प्रभुपाद जी के शिष्य थे अयग्रीव प्रभु, वो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है हरे कृष्णा एक्सप्लोजन, उसमें वो बताते हैं कि वो प्रभुपाद से मिलने के पहले ही उनको ईस्टर्न विजडम, ये पूर्व के ज्ञान के बारे में रुचि हो गई थी, और वो जब पूर्ण थोड़ा बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, हिंदुइज्म के बारे में पढ़ा, बोले ये लोग इतने निराशावादी क्यों है, हमेशा कहते हैं दुख जगह दुखालय है, इसमें बहुत दुख है, दुख का तो इतना आनंद में है. और फिर वो बोले कि वो वैसे तो पहले ही वो प्रभुपाद से मिलने के पहले ही वो गुरु की खोज भारत में आ गए, और भारत में आ गए तो बॉम्बे में उन्होंने लैंडिंग किया और बॉम्बे के रेलवे स्टेशन जब लोकल को देखे थे, हाँ ये का दुखा ले ही है. तो अभी जगत दुखालय है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसके दुख बढ़ाने हैं या इसके दुख वैसे के वैसे रखने, हमें भी दुखों का निवारण जहां तक कर सकते हैं करना चाहिए. वे चौथे स्कंद में हम देखते हैं कि जब पृथु महाराज के पास नागरिक आते हैं और वो कहते हैं कि अभी सारा जो अकाल हो गया है और हम सब भूख से इस तरह से जल रहे हैं जैसे कि अगर कोई जंगल में कोई चींटी आग में जल रही हो, उस तरह से हम जठराग्नि के कारण जल रहे हैं. तो पृथु महाराज नहीं कहते कि हाँ अभी आपको दुख आ रहा है, उनका साक्षात्कार हो रहा है, वो क्या करते हैं, तुरंत कार्य करते हैं, क्योंकि राजा के रूप में जिम्मेदारी है कि अपनी प्रजा का देखभाल करना. तो जब हम कहते हैं दुखालय दुखालय है ये जन्म मृत्यु चरा देश, का मतलब ये नहीं है कि हमें ये दुखों को वैसे ही रखना है या बढ़ाना है, पर ये दुखों को छिपाना भी नहीं है, ये दुखों को स्वीकार करके उस पर चिंतन करके हमारे जीवन को इस तरह से जीना है जिससे कि हम आध्यात्मिक स्तर पर जा सकें और आध्यात्मिक स्तर पर फिर हम मुक्त हो सकें. तो मतलब क्या है कि एक है निराशावाद, निराशावाद मतलब क्या है, ये भौतिक जगत दुखालय, यहाँ पे कुछ करो ही मत, पर निराशावाद भी उचित नहीं है या वैदिक तत्व ज्ञान नहीं है कि जब तक हम भौतिक जगत में हैं हमें यहाँ पे जिम्मेदारियां है और जिम्मेदारियां पूरी करनी है। पर तो निराशावाद यह है, वैदिक तत्व ज्ञान नहीं है। पर मिथ्या आशावाद, मुझे फॉल्स ऑप्टिमिज्म, मिथ्या आशावाद क्या है कि यहाँ पे हम कुछ योजना करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 1824 में या कुछ तो भी एक वैज्ञानिक था, उसने एक लेख लिखा कि अभी विज्ञान की ऐसी प्रगति हो रही है कि 20 सालों में दुनिया में एक ही समस्या रहेगी, कि विज्ञान ने सारे समस्याओं का हल कर दिया होगा और सारा जो मेहनत का काम है सारा मशीन कर ले होगे, तो मानव के सामने एक ही समस्या होगी कि इतना समय है उस समय क्या करें।
तो वास्तव में क्या हो रहा है, समस्या और बढ़ गई है और अभी समय ही नहीं है किसी के पास।
तो क्या है, भौतिक स्तर पे समस्याओं का हल नहीं होता है। मैं जो संयुक्त राष्ट्र होते हैं, संयुक्त राष्ट्र का की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ जब थी, तो उसमें मुझे कुछ प्रवचन देने के लिए बुलाया गया था। तो वहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र के, भारत के जो महाराष्ट्र के थे वो अध्यक्ष उस विभाग के, तो वो बता रहे थे कि 50 साल से लगभग अभी संयुक्त राष्ट्र के लाखों लाखों लोग हैं विश्व भर में, और करोड़ों करोड़ों की मात्रा में उन्होंने धन भी खर्च किया है कि दुनिया को और अच्छा बनाने के लिए। तो उनके लगभग तब उस समय 63 अलग अलग विभाग थे कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसे अलग अलग बालकों के लिए, स्त्रियों के लिए, जो कामगार लोग हैं उन सब के लिए, तो ऐसे सब संस्थाएं बनाए। और होता है कि हमने बहुत प्रयास किया है, पर यह बताने के लिए हमें खेद होता है कि ये सारे 63 विभागों में जो 1944 में परिस्थिति थी, 1946 में जब ये स्थापित किया, उससे अभी परिस्थिति खराब ही हो गई है। तो मतलब इतना करने से कुछ फायदा नहीं हुआ है। तो क्या है, एक है कि निराशावाद, मैं भौतिक स्तर पर कुछ करूंगा ही नहीं, और दूसरा है मिथ्या आशावाद कि मैं सब कुछ भौतिक स्तर पर ही करूंगा और मैं आध्यात्मिक स्तर पर कुछ करूंगा ही नहीं। तो नहीं, हमको क्या चाहिए, एक समतोल चाहिए। भौतिक स्तर पर हमें जो जिम्मेदारियां वो करनी है, पर हमारा जोर जो होता है कि आध्यात्मिक स्तर पर हम हमारी चेतना की प्रगति करें, फिर उससे हम इस भौतिक बंधन के और भौतिक जगत के सारे दुखों से पर जा सकते हैं। और इसके लिए क्या आवश्यक है, मई चानन योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। मई चा अनन्य योगेन, भगवान कहते हैं कि भक्ति करो, किस तरह से, अनन्य योगेन। तो भक्ति जो है वह यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण अंग है इन संगों का। तो जब ज्ञान योगी होते हैं, जब ज्ञान योगी भी ज्ञान साधना करते हैं, तभी वे भक्ति अपने ज्ञान का एक रंग अंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए भगवान ये एक ध्येय नहीं है, गॉड इज नॉट अ गोल, गॉड इज अ टूल फॉर देम। कि भगवान एक ध्येय नहीं है, भगवान एक माध्यम है। कि अभी मैं तमोगुण में हूँ, रजोगुण में हूँ, उनका प्रभाव है थोड़ा बहुत मुझे, तो मुझे शुद्ध सत्व पे जाना है, दिव्य स्तर पे जाना है, आध्यात्मिक स्तर कैसे जाऊं, तो मैं भगवान पे चिंतन करता हूँ, उससे मैं नीचे के गुणों से सत्व गुण तक आ जाऊंगा, और फिर उसके बाद में मैं वो भगवान पे चिंतन करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो होता है ज्ञान योग का ऐसा भाव भी होता है। तो कुछ ज्ञान योगी होते हैं वो ज्ञान से भक्ति तक आ सकते हैं, पर यहाँ पे ज्ञान योग में भी भगवान बोलते हैं कि भक्ति महत्वपूर्ण है। किस प्रकार की भक्ति, अनन्य योगे न भक्तिर अव्यभिचारिणी। और इस तरह से यहाँ पे जो और जो गुण बना रहे हैं वो, इन सब का सार क्या है, वह सब जो है एक अंतरंग परिवर्तन के लिए है। साधारणतः भौतिक जो शिक्षण होता है वह अंतरंग परिवर्तन पे ज्यादा कुछ जोर नहीं देता है। वह जो जोर देता है वह किस पे है, कि आपको कितनी जानकारी प्राप्त हो और आपको जानकारी प्राप्त करने के बाद आपको नौकरी कैसे मिले। तो बेसिकली जो लर्निंग इज नॉट फॉर अर्निंग, लर्निंग इज फॉर ग्रोइंग। जो ज्ञान का उद्देश्य क्या है, वो सिर्फ नौकरी प्राप्त करना नहीं है, आजकल वही उद्देश्य हो गया। और आजकल का शिक्षण ऐसा है कि वो भी उद्देश्य पूरा नहीं होता है। बहुत से लोग होते हैं शिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, कोई डिग्री प्राप्त करते हैं, उसके बाद में भी उनको कोई नौकरी नहीं मिलती है, तो फिर ये दुर्भाग्य की बात है। शिक्षण ऐसा होना चाहिए उसे चरित्र का विकास हो, उसे व्यक्ति के अंतरंग वृद्धि हो। और वृद्धि कब होती है? जब गुणों का विकास होता है, न केवल जानकारी का विकास होता है। तो इसलिए यहां बताया जा रहा है कि ऐसे गुण जब प्राप्त होते हैं तो वह ज्ञान है, और इसके अलावा जो भी है वह अज्ञान है। जो भी है वह अज्ञान है, उसका मतलब क्या है कि भौतिक दृष्टि से भले ही ज्ञान हो सकता है, पर जो सत्य में ज्ञान है उसके और उससे कोई प्रगति नहीं होती है। वह उससे जो वास्तव में, अगर कोई व्यक्ति जेल में है और फिर जेल में जब बैठा है और फिर जेल की जो दीवार है, वो जेल के दीवार की रचना में वो पीएचडी कर देता है वहां पे, तो उससे क्या फायदा होने वाला है उसको? वास्तव में क्या करना है और जेल से बाहर कैसे निकलना है वह महत्वपूर्ण है। तो कोई भी चीज में हम बहुत ज्ञान प्राप्त करा तो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पर वो ज्ञान का उद्देश्य क्या है? जेल में अगर है, सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है? जेल से बाहर कैसे निकले? जेल से बाहर कैसे निकले महत्वपूर्ण है। ठीक उसी तरह से इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान क्या है कि हम यहाँ पे दुखों से राहत कैसे प्राप्त करें। तो इसके अलावा बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है। अभी हम कहेंगे कि इतने सारे विषय है जिनका ज्ञान है, फिजिक्स केमिस्ट्री इतने सारे विषय है, इतिहास भूगोल ये सब, इन सब का ज्ञान का ज्ञान नहीं है, वो एक तरह से ज्ञान है, पर इन सब से आध्यात्मिक प्रगति में कोई मदद नहीं होती है। इसीलिए अज्ञानम यदतोऽन्यथा, वह सब अज्ञान है। यहाँ पे भगवान जी बता रहे हैं वो आध्यात्मिक प्रगति की दृष्टि से ज्ञान के बारे में बता रहे हैं।
जैसे यहाँ पे ये जो गुण बताए गए हैं उसका कल्टीवेशन करना है क्योंकि वो ज्ञान प्रकट कराएंगे, लेकिन ये भक्ति और व्यभिचारिणी इसके बारे में आपने कहा कि ये ज्ञानी के लिए एक अंग है, तो ये सब जो गुण है बेसिकली ये ज्ञानी का साधना है कि वो कल्टीवेट करे ताकि ज्ञान। लेकिन अभी जो भक्ति योगी है उसके लिए इन गुणों को कल्टीवेशन करने में कितना ध्यान देना चाहिए, या फिर वो उसकी जो अंग है श्रवण कीर्तन उस पर जोर देना चाहिए?
क्या भक्तों को जो अलग अलग गुण है उनका विकास करने में कितना जोर देना चाहिए, या कि सिर्फ भक्ति के प्रधान अंग श्रवण कीर्तन उस पर ही जोर देना चाहिए? वास्तव में भक्ति यह संपूर्ण व्यक्ति, उसके चरित्र, उसके जीवन, उसको सर्वांग दृष्टि से परिवर्तित करती है। तो हम भक्ति को सिर्फ कुछ कार्यों से संकुचित नहीं कर सकते, वह प्रधान कार्य है भक्ति के। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम स्वाद सेवन, वहां पे नौ कार्य बताए हैं, पर उसको ही हम दूसरी विश्लेषण करते हैं तो रूप गोस्वामी 64 कार्य बताते हैं भक्ति के भक्ति सामने सिंधु में। और फिर उसके बाद में वो क्या बताते हैं, वास्तव में यह सब है महत्वपूर्ण क्या, ये न कहने प्रकार मन कृष्ण निवेशित कि 64 अंग भी है वो आपको मत करेगी, महत्वपूर्ण क्या, हमेशा भगवान का स्मरण करो। तो भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमें भगवान के करीब जाने के लिए, भगवान की सेवा के लिए जाने के लिए जो भी अनुकूल है वो करें। तो जब भी, तो जो अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम, यह भक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्या है, अगर हम देखेंगे शरणागत के 6 लक्षण जो है उनमें से पहले 2 कार्य है और बाकी 4 भावनाएं हैं, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल रक्षिष्यति विश्वास गोप्तत्व वर्णन तथा, ये सब क्या है, भावना है, वक्तव्य भावना है कि भगवान हमेशा रक्षण करेंगे, मैं भगवान पर निर्भर हूँ, मैं बिल्कुल भगवान के बिना असह्य हूँ, तो ये सब भावनाएं, ये भावनाएं धीरे धीरे आएगी। पर हम क्या शरणागत होने के लिए क्या करना चाहिए, जो कार्य हम कर सकते क्या है, जो अनुकूल है वो स्वीकार करें, जो प्रतिकूल है उसको इनकार करें। तो यह जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुणों का विकास भी है उसमें, हमें देखना है कि जो मेरे भक्ति के अनुकूल अनुकूल है वह मुझे करना चाहिए। तो अभी जो गुण होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ बाह्य गुण हो सकते हैं कि अगर मैं मुझे प्रवचन देना है तो स्पष्टता से उच्चारण करना, तो ऐसे इस तरह से बोलना कि वह अब जो श्रोतागण है उनको अच्छा लगे, मधुर लगे, प्रसन्न करने जैसे लगे, तो अच्छा तरह से प्रवचन देना यह भी एक गुण होता है। अच्छी तरह से गीत गाना यह भी एक गुण होता है, कीर्तन करना वो भी एक गुण होता है। तो ये एक तरह के गुण है। तो दूसरे तरह से कुछ गुण हो सकते हैं कि नम्रता होती है, सहनशीलता होती है। तो यह जो है अभी हमें हमारी सेवा के लिए जो अनुकूल है उसके लिए जो भी जरूरी है वह हमें करने के लिए जानने चाहिए। ऐसे नहीं है कि क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूं इसलिए मुझे प्रवचन को तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो हमें एक बार कुछ भक्तों ने प्रवचन कैसे देना, तो उसके बाद शिक्षा दी थी पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, बोलते थे कि तो लास्ट इंस्ट्रक्शन था डिपेंड ऑन कृष्णा, पर उसके ब्रैकेट में आफ्टर यू हैव प्रिपेयर,
भगवान कृष्ण पे निर्भर हो पर तैयारी करने के बाद। ऐसे नहीं, तैयारी के बिना मैं भगवान पे निर्भर हूं।
तो वो क्या है, वो दैट इज नॉट डिपेंडेंस, दैट इज निग्लिजेंस मास्किंग एज डिपेंडेंस। वह क्या है, गैर जिम्मेदारी है जो निर्भरता के नकाब में आ रही है। वास्तव में हमें सेवा करनी है मतलब जिम्मेदारी स्वीकार करनी है। तो हमें जो भी अनुकूल है भक्ति के लिए वो स्वीकार करना चाहिए और गुणों को सीखना चाहिए। और यहाँ तक कि प्रभुपाद जी हम देखते हैं कि जब हम मायापुर का मंदिर बनाया था, बड़ा मंदिर बन रहा था, तो सारे जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे वो तो नए थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि जो यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध मायावादी मिशन है उनके सेंटर में जाओ और वो उनका मिशन कैसे मैनेज करते हैं वो देखो और उनसे सीखो और वैसा हम मैनेजमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी जो है उनका तत्व ज्ञान है उसका पूरा खंडन कर दे। तो फिर प्रभुपाद जी देखा कि ये मैनेजमेंट कर रहे, अच्छा कर रहे, तो उन्होंने अपने शिष्य को भेजा वहाँ पे, आपको कैसे मैनेजमेंट कर देख के आओ। तो क्या है, मतलब न केवल भौतिक चीज, भौतिक अभी मैनेजमेंट करना, ये भौतिक स्किल, भौतिक प्रतिभा है ये, तो इसको न केवल सीखना जरूरी है। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी बोले कि मायावादी की वजह से सीखना पड़ेगा, वो जाके सीखो, ऐसे नहीं कि उसका शिष्य बन जाओ, पर आप देख के आ जाओ वहाँ पे, निरीक्षण करके आ जाओ। तो इसीलिए जो भी हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है वह करना हमें चाहिए। तो अगर कोई गुणों का विकास करना है तो उस पर भी जितना जोर अनुकूल है हमारे भक्ति के लिए उतना देना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमें वो गुणों का पूरा दुर्लक्ष्य करें, और न ही ऐसा है कि वो गुणों का ही विकास करने में इतना लग जाए कि मैं बाकी कुछ करूँगा ही नहीं। अभी हिटलर जो था पिछले शताब्दी का बहुत ही बड़ा वक्ता माना जाता है, तो बहुत ही ओजस्वी वक्ता था, उससे वो सारा उसने जर्मनी को प्रभावित कर दिया। तो वो क्या करता था, वह घंटों घंटों अपने जो भाषण देने वाला था, तभी टीवी नहीं था, रेडियो होता था, तो एक भाषण देता था तो वो एक भाषण घंटों घंटों तक बार बार रिवाइज करता था और फिर रिकॉर्डिंग करके सुनता था और फिर उच्चारण को प्रैक्टिस करता था। तो वैसे हमको घंटों घंटों प्रवचन के लिए कुछ वैसे करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे सारे भक्ति की साधना है उसमें जितना उचित है उतनी मात्रा में हमें गुणों के विकास के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। यस
में उसको ये चीज दिखाई देते हैं, जन्म मुक्ति जरा व्याधि है करके, वो ये दुख है करके, तो ये संकेत करता है ये दो क्वालिटीज, इंद्रिया तेज वैराग्य और अलंकार।
हाँ, जो अभी क्या इन सवाल है कि ये सब गुणों की जो सीक्वेंस है श्रृंखला जो, उसमें कोई संबंध है क्या कि अहंकारी है और फिर वह इंद्रियार्थ से वैराग्य, इंद्रियों के विषय से वैराग्य है, तो क्या वह व्यक्ति जन्म मुक्ति जरा व्याधि इसको पहले समझ सकता है इन दुखों को? हाँ, एक तो सत्य है। क्या है कि एक बार एक भक्त पुनः प्रवचन दे रहे थे, बोले थे कि आपको हमेशा विचार करना चाहिए कि मेरी आज मृत्यु हो जाएगी। तो फिर तो एक भक्त ने सवाल पूछा कि तो भाई अगर मैं सोचूंगा आज मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं सोचूंगा मैं दफ्तर में क्यों जाऊँगा, मैं मंदिर में बैठ के जब करता हूँ दिन भर,
तो फिर तो इसका मतलब क्या है आज मृत्यु हो जाएगी?
तो क्या हमेशा हमें भयभीत रहना है कि अभी मैं अभी यहाँ से प्रवचन से मंदिर में आ रहा हूँ, कोई गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी मेरे ऊपर से चल जाएगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी? तो क्या है, जो भी अभी मृत्यु है उसके बारे में हम विचार सत्वगुण में कर सकते हैं, रजोगुण में कर सकते हैं, तमोगुण में कर सकते हैं। तो मृत्यु का हमेशा भय रहना ये तमोगुण का लक्षण है, उसको अंग्रेजी में पैरानोइया कहते हैं। पैरानोइया मतलब कि ऐसे व्यक्ति बीमार जैसे डर जाता है, कुछ लोग हमारे भागवत में बताए कंस जो था हमेशा डरा था कृष्ण आ जाएगा कृष्ण आ जाएगा कृष्ण आ जाएगा कृष्ण आ जाएगा, वो आईना देखता था आईना में उसका अपना सिर नहीं दिखता था, क्या कृष्ण ने मेरा सिर काट दिया चला था। तो वो क्योंकि कृष्ण का स्मरण हो रहा था इसलिए वो अनुकूल हो सकता है, पर से बिल्कुल हमेशा भयभीत रहना यह कोई दुख दोषाओं दर्शनम का लक्षण नहीं है। यह मतलब क्या कि ये भौतिक जगत दुखालय है और इससे मुझे परे जाना है, इसीलिए मुझे एक विधि का पालन करना है। वो विधि क्या है? वह आध्यात्मिक चेतना जागृत करने की विधि है, वह है भक्ति की विधि है। तो इसीलिए सत्वगुण के स्तर पे हम समझते हैं कि ये समस्या है और ये हल है। जब तमोगुण में होते हैं तो दो चीजें हम करते हैं, या तो मैं शराब पी के समस्या है यही भूल जाऊंगा और खुश हो जाऊंगा, और या फिर मैं समस्या देख के इतना असह्य हो जाएगा मायूस हो जाऊंगा कुछ करूंगा ही नहीं। तो दोनों उचित नहीं है। तो इसीलिए हमें जब जो अगर कोई विरक्त हो गया है अहंकार से और इंद्रियों के विषयों से, तो लगभग उसका लक्षण सत्वगुण में है। सत्वगुण में व्यक्ति जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को देख कर उस पर क्या करना चाहिए उस पर चिंतन कर सकता है। ऐसे नहीं कि असह्य हो जाना है उससे, नहीं मायूस हो जाना है, हताश हो जाना है, भयभीत हो जाना है, नहीं, उससे हमें क्या होना है, प्रवृत्त होना है कि हम भक्ति में लग जाए। ये क्या है कि देयर इज पेसिमिज्म इन द वैदिक फिलोसॉफी बट द पेसिमिज्म इज ओनली इनिशियल, इट इज नेवर फाइनल। जो निराशावाद जो है एक तरह से निराशावाद है, प्रभुपाद जिसके तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर व्यक्ति इस भौतिक जगत के बारे में निराशावादी नहीं होगा तो उसको आध्यात्मिक प्रगति करने में कोई पुष्प प्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो मतलब क्या है कि निराशावाद है, पर वो किस प्रकार का निराशावाद है? वह शुरुआत का निराशावाद है, ताकि वही शास्त्र जो है बताते हैं कि भौतिक जगत दुखालय है, वो ये भी बताते हैं कि वास्तव में हम सब सच्चिदानंद है और आध्यात्मिक जगत है जहां पे अनंत आनंद है और वहां पे हमें जाना है। मतलब अगर ये समझना है तो इसका उदाहरण ले सकते हैं, कोई व्यक्ति बीमार है, मान लीजिए अगर किसी को कैंसर हो गया है, तो अगर वो व्यक्ति को कैंसर ऐसे स्तर में है कि उसको ठीक कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति को अगर पता ही चलेगा कैंसर है तो क्या होगा, अंदर से कैंसर उसको खा जाएगा, उसको खत्म कर देगा। पर जब उसको पता है तो पहले तो थोड़ा दुख, अरे मेरे कैंसर हो गया, इतना खतरनाक बीमारी हो गई, तो उसमें थोड़ा सा निराशावाद है। पर बाद में जब डॉक्टर बोलते कि आपको ये दवाई दो, आप ये ट्रीटमेंट लो, आप ठीक हो जाओगे, तो फिर क्या उसमें आशावाद ही है। तो क्या है, जन्म मृत्यु जरा आदि को न देखना मतलब क्या, वो मैं बीमारी है या स्वीकार ही नहीं करना। और अगर वो व्यक्ति से जन्म मृत्यु जरा आदि को ही देखता है, आध्यात्मिक चीज को नहीं देखता, मतलब अरे मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, बीमार हूं, क्या क्या करूं मैं, वैसा भी होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम देखते हैं कि दोनों को साथ में डाला है भगवान ने, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, उसके साथ में कुछ समय बाद क्या है, मई चानन्य होगी ना भक्ति रंग विचारी, भक्ति यह हल है। वास्तव भक्ति से हम मुक्त हो सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। तो यह जो है अभी यह ज्ञान बता रहे हैं भगवान, और यह क्या है, यह प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यह ज्ञान क्या है तात्पर्य में, जो कि इस भौतिक जगत से मुक्त होने का मार्ग है। तो पिछले श्लोक में क्या बताया था, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदारतम, कि क्षेत्र के विकार बताए थे सातवें श्लोक में। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बोलते हैं कि ये जो बता रहे हैं क्षेत्र के विकार नहीं है, यह अभी अमानित्वम अदम्यत्वम है। वहां पे क्या क्षेत्र विकार कहता, इच्छा द्वेष सुखम दुखम जो था वह क्षेत्र का विकार था। मतलब क्या है वह क्षेत्र का विकार, मतलब क्या कि अभी हम जिस तरह से भी जिएंगे, क्या है इस भौतिक जगत में परिवर्तन हमेशा होने वाला है। अगर दूध को रखेगा वैसे ही तो क्या होगा, दूध कुछ समय बाद सड़ जाएगा। जो इस भौतिक जगत परिवर्तन तो होने वाला है, पर परिवर्तन क्या होता है, वो विनाश की ओर परिवर्तन होता है। पर अगर मुझे दूध से घी बनाना है तो वो अपने आप नहीं बनने वाला है, उसको मुझे पहले उसको दही बनाना पड़ेगा, फिर दही से मुझे और बटर मिल्क छाछ, फिर उसके बाद में जो बड़ी प्रक्रिया है उससे फिर घी बनेगा। अलग अलग प्रक्रिया जिसे बना सकते हैं, पर क्या है परिवर्तन तो होने वाला है, पर एक है जो अपने आप परिवर्तन होगा जो निचली ओर होगा, और जो प्रयास से परिवर्तन करेगा वो ऊपर ले जाएगा। तो इच्छा द्वेष सुख दुख जो है ये क्षेत्र के ही विकार है। हर एक व्यक्ति में किस प्रकार की इच्छा होगी, किस प्रकार का द्वेष होगा, वो अपना हम देखते हैं भौतिक जगत में अलग अलग लोगों के अलग अलग कुछ आसक्तियां होती है। कोई कहता है कि मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है, कोई कहता है मुझे टेनिस अच्छा लगता है, कोई कहता है मुझे वीडियो गेम अच्छा लगता है, कोई कहता है हर सब लोगों का अपना अपना इच्छा द्वेष सुख दुख होता है। पर यह क्या है, यह केवल क्षेत्र का अधिकार है, पर इससे किसी का कोई उद्धार नहीं होने वाला है। पर अमानित्व मदम्बित्व अहिंसा शांति राजन, ये क्या है, यह क्षेत्र विकार नहीं है, यह क्षेत्र से बाहर निकलने का मार्ग है, और इसके लिए व्यक्ति को प्रयास करना पड़ेगा, उसको उसको अनुशीलन करना पड़ेगा। तो अभी इसके बाद में भगवान ज्ञेय के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी भगवान बोलते हैं कि मैं क्या है, ये विषय खत्म हो गया, एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम होने का, यह ज्ञान है। इसके बाद में जो ज्ञेय है उसके बारे में मैं बोलूंगा, ऐसे भगवान के स्वयं क्या है, जो ये मैं जैसे बताया था पहले कि इस अध्याय में भगवान खुद विषयों का बड़ा ही विभाजन करके बोलते हैं। ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि,
ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि,
यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते,
यज्ञात्वामृतमश्नुते,
अनादिमत्परं ब्रह्म,
अनादिमत्परं ब्रह्म,
न सत्तन्नासदुच्यते,
न सत्तन्नासदुच्यते।
तो ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि, मैं ज्ञेय के बारे में प्रवक्ष्यामि, मैं बोलने वाला हूँ। और ये ज्ञेय के बारे में जानने से क्या होगा फायदा, यज्ञात्वा अमृतमश्नुते, आपको अमृत प्राप्त हो जाएगा। अभी अमृत इस शब्द के दो अर्थ है, अमृत का एक अर्थ है जो स्वर्ग का अमृत लोग पीते हैं, वह एक अमृत का अर्थ है, और दूसरा अमृत का अर्थ है अमृतत्व, मतलब अमरत्व शाश्वत। तो यहां पे क्या है, यह ज्ञान प्राप्त करने से आपको आपको अमृत आके पिलाने वाला नहीं है, वह अमृत का अर्थ नहीं हो रहा है। ये ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि, अगर आप ज्ञान समझ लोगे तो क्या होगा, आपको खुद का अमरत्व जो है, कैसे आप आध्यात्मिक तत्व हो, आप कैसे अमर हो, वह अमृतत्व की पहचान हो जाएगी, वो समझ जाएगी। तो ज्ञान मतलब जो हम प्राप्त करते हैं, क्या है दो इसी अध्याय में आएगा बाद में, 17-18 अध्याय था, क्या है, ज्ञानम ज्ञेयम और परिज्ञाता, त्रिविध कर्म चोदना भगवान कहते हैं। तो अभी ज्ञान मतलब क्या है, उसमें तीन विभाग होते हैं। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ और उत्तम चोपड़ा मेरी ओर देख रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है, वो वहां पे बैठे हैं, तो वो क्या है, ज्ञाता है, और मैं जो बैठा हूँ वो ज्ञेय हूँ, मतलब वो मेरी ओर देखे, मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और जो मेरे और उनके बीच में जा रहा है, जो उनके मन में उसका विचार हो रहा है, वह क्या है, ज्ञान है। मतलब यहाँ पे तीन चीजें होती है, देर इज द सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, देर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, एंड देर इज द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। जो ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वो परिज्ञाता है, और जो जिस विषय के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञेय है, वह सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, सॉरी वो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, वो जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और जो हम प्राप्त कर रहे हैं उसको ज्ञान कहते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पे ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जिस विषय के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त करना है उसके बारे में बताऊंगा अभी, और उससे क्या होगा, अमृतमश्नुते, उससे आप अमरत्व प्राप्त कर लोगे। मतलब अभी पहले उन्होंने बताया है कि यह ज्ञान है, पिछले श्लोक में क्या बताया, 8-12 श्लोक, यह ज्ञान है। तो ज्ञान, और उन्होंने क्या बताया, ज्ञान मतलब गुण के बारे में बताया, ये सब गुण आपको, मतलब ज्ञान प्राप्त हो रहा है आपको, पर ज्ञान का एक उद्देश्य होता है कि किसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, तो वह अभी भगवान इन श्लोकों में बताएंगे। यस,
तो लाइक जो अभी आपने बताया कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, देयर इज सब्जेक्ट हु इज परसीविंग द नॉलेज, एंड द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, ट्रांसमिशन अबाउट दैट सब्जेक्ट इज नॉलेज। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी सी द प्रीवियस वर्सेस 8-12 श्लोक में, तो व्हाट इज दैट, the quality is acquiring by the transmission।
मैं वही बता रहा था शायद कि अगर मैं जो पूछा बोला कि अगर हम कहते हैं कि जो जानकारी का प्रवाह जो हो रहा है वह ज्ञान है, तो वो गुण जो पिछले शब्द में बताए थे वो सब क्या है, तो अभी ऐसा सवाल ना अप्रोचिंग के बाद पूछा करो क्या है यह, अभी सवाल समझाने के लिए भी 5-10 मिनट लग जाएंगे, फिर उसके बाद में जवाब चलना पड़ेगा। I can always have question। मैं संक्षिप्त में बोल देता हूँ क्योंकि आपने सवाल पूछ लिया है। तो क्या है कि वहां पर जो बताया जा रहा है कि जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो परिवर्तन होता है व्यक्ति में, वह बताया जा रहा है। तो क्या है कि वैदिक संस्कृति में ज्ञान ये कभी केवल इंफॉर्मेशनल नहीं होता है, हमेशा वो ट्रांसफॉर्मेशनल होता है। हमेशा जो ज्ञान होता है वह केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं रहता है, वह परिवर्तन करने के लिए होता है। जैसे कोई दवाई होती है, वो दवाई जिसे कोई मरीज जाता है तो वो दवाई का नाम याद करने के डॉक्टर के पास ही जाता है, वो दवाई लेके खुद की सेहत को और अच्छी करने के लिए जाता है। तो इसीलिए तो अभी क्या है, यह सद्गुणों का विकास करना यह एक तरह से ज्ञान प्राप्ति के लिए अनुकूल है और दूसरी ओर से ज्ञान प्राप्ति का वह लक्षण भी है। तो द लिस्ट ऑफ क्वालिटीज इन द भगवद गीता इज बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव ऑफ द सिद्धास एंड प्रिस्क्रिप्टिव फॉर द साधकास। मतलब क्या, कई बार जब भगवद गीता में गुण बताते हैं भगवान, तो क्या है वह गुण सिद्धों में है, उसका वर्णन किया जा रहा है, तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर द साधकास, फॉर द सिद्धास, कि सिद्धों में ऐसे गुण हैं और ऐसे गुण जिनमें हम समझ सकते हैं कि ये सिद्ध है, और वह जो गुणों की वर्णन है वह प्रिस्क्रिप्टिव फॉर द साधकास, मतलब ऐसे गुणों का आप अनुसरण करोगे तो आप भी सिद्धि की ओर प्रगति करोगे। तो इस तरह से मतलब यह ज्ञान प्राप्ति के लिए अनुकूल भी है और ज्ञान प्राप्ति के लक्षण भी है। तो अभी ज्ञेयम यत्तत्र वक्ष्यामि, मतलब अभी ज्ञान के बाद जो विषय है ज्ञान का उसके बारे में वर्णन करूंगा। तो अभी यद् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अमृत अश्नुते, आपने अमृत प्राप्त होगा, तो अमृत प्राप्त होगा तो अभी क्या होगा, अमृत अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्नासत् उच्यते। तो अभी यहां पे, अभी यहां से श्लोक जो है 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक भगवान पहले आत्मा के बारे में बोलेंगे, फिर बाद में परमात्मा के बारे में बोलेंगे। तो यहां पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, अभी अलग अलग आचार्य जो है ना, बल्कि कुछ आचार्य कहते हैं सब परमात्मा के बारे में वर्णन है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यहां तक कि यह पहला श्लोक जो है आत्मा के बारे में वर्णन है और इसको परमात्मा के लिए ले जा सकता है, पर अधिकांश रूप से आत्मा का, अनादि मत परम ब्रह्म, मत परम मुझसे अधीन है वो, तो ये क्या है आत्मा। और न सत्तन्न सत उच्यते, वह इस भौतिक जगत के परिवर्तनों के परे है। तो मतलब मुझे ज्ञान किसके बारे में प्राप्त करना है, आपको याद है ज्ञान की परिभाषा कहती है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो 13वें श्लोक में जो अणुक्षेत्रज्ञ है, जो आत्मा है, उसके बारे में वर्णन है, और फिर 14वें से 18वें श्लोक तक जो विभू क्षेत्रज्ञ है परमात्मा, उनके बारे में वर्णन है। तो उसके बाद में भी जो विख्यात श्लोक आता है उसके बारे में चर्चा है, सर्वदा पाणि पादं तद्, सर्वतो शिशिरो मुखम्, सर्वदा श्रुतिमल्लोके, सर्वमावृत्य तिष्ठति। तो सर्वतः पाणि पादं तद्, पानी मतलब क्या, पीने का पानी नहीं है वो पानी है, ये हिंदी शब्द है, पानी मतलब हाथ, सर्वतः पानी पादम तक, उनके हाथ और पैर जो है सब जगह पे है, सर्वतो अक्षि शिरो मुखम, उनके आंखें, उनका मुख, उनका सिर, ये सब जगह पे है, सर्वतः श्रुतिमल लोके, वह उनके कान भी सब जगह पे, और इस तरह से सर्वम आवृत्य तिष्ठति, इस तरह से वह सब जगह को आवृत करके उनका उनका अस्तित्व है, तिष्ठति, वो रहते हैं। तो अभी किसके बारे में वर्णन हो रहा है, अभी अगर एक तरह से हम जानते हैं कि जो निर्विशेष ब्रह्म है वो सर्वव्यापी है, पर जो निर्विशेष ब्रह्म है उसका कोई विशेष नहीं है, इसे उसको निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं, तो उसे कोई आंख नहीं है, उसको कोई मुंह नहीं है, उसका कोई कान नहीं है, तो ये किसके बारे में वर्णन हो रहा है, यह परमात्मा के बारे में वर्णन हो रहा है, और वह भी एक ज्ञेय है। तो साधारणतया अगर हम उपनिषद पढ़ते हैं तो उपनिषदों में जो भगवान के बारे में ज्यादा स्पष्ट वर्णन नहीं है, उल्लेख है पर स्पष्ट रूप से ज्यादा वर्णन नहीं है, क्योंकि जो उपनिषद है वह ज्ञानी लोगों के लिए बताए गए हैं, और ज्ञानी लोग क्या होते हैं, उनको अपना तर्क वितर्क करके अपने निष्कर्ष निकलने में बड़ा आनंद मिलता है, तो उनके अनुकूल उनके लिए जो चाहिए वो दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप ये जो श्लोक श्रृंखला है यह बिल्कुल उपनिषदों के भाव में ही दी गई है, तो इसलिए भगवान व्यक्ति कौन है नहीं बता रहे हैं, वह व्यक्ति जो है वह सर्वव्यापी है, सब जगह पे है। तो अभी अद्वैताचार्य ने जब श्लोक सुना था तो उनको बड़ा विडंबना हुई, क्या है ये किसके बारे में बता रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनको एक बार सपने में आए थे और उन्होंने बताया कि वास्तव में परमात्मा के बारे में वर्णन हो रहा है। तो फिर इसके बाद में अभी भगवान बोलेंगे कि अब ये तो बता देंगे सब जगह पे है, थोड़ा सा अविरुद्धास्पद कुछ बोल देंगे। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असत्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृच। तो सर्वेन्द्रिय गुण आभासम, तो आभास मतलब कि जो स्रोत है जिसे आता है वो, तो सर्वेन्द्रिय गुणाभासम कि सब इंद्रियों के और सब गुणों के वो स्रोत है, पर स्वयं जो है सर्वेन्द्रिय विवर्जितम। अभी देखिए विरोध लगता है, पिछले श्लोक में बताया कि सब जगह पे उनकी इंद्रिया है, आंखें है, कान है, मतलब ये तो क्या है, ये इंद्रिया ही है, ये सब जगह पे है, पर यह होते हुए भी क्या बोल रहे हैं उसके साथ साथ, क्योंकि वो इंद्रिया है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई बोल रहा है सब जगह पे इंद्रिया है, कोई इंद्रिया है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, वो कोई विरोधाभास है वहां पे। तो एक्चुअली इन अंग्रेजी में दो शब्द है, मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, एक कॉन्ट्रडिक्शन है और दूसरा है पैराडॉक्स। तो कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास, पर पैराडॉक्स मतलब कि वो जानबूझ के विडंबना है, आई थिंक इट्स पजल और बिविल्डरमेंट। पैराडॉक्स विडंबना हो सकती है पैराडॉक्स में, उसका क्या वैसे विडंबना का भी क्या अर्थ है समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सुनते हैं, पर मतलब क्या कि कभी कभी कोई चीज ऐसी विरोधास्पद लगती है जिससे कि और कोई गुण तत्व बताया जाता है। ऐसे जो टीचिंग में बताते हैं द लीस्ट करेक्टेड पेपर आर द मोस्ट करेक्ट, लीस्ट करेक्टेड पेपर आर द मोस्ट करेक्ट, मतलब क्या, अगर कोई टीचर ने चेक किया पेपर तो जो पेपर में सबसे कम मार्क है कि ये कुछ क्रॉस नहीं है, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है जिनमें सबसे कम करेक्शन किया है टीचर ने, उसका मतलब क्या है वह पेपर सबसे अधिक करेक्ट है, कि मतलब विद्यार्थी ने कुछ गलतियां की नहीं है, इसलिए क्या है टीचर को ज्यादा करेक्शन करने नहीं पड़े। तो पहले अगर हम सुनते हैं लीस्ट करेक्टेड पेपर और मोस्ट करेक्ट, समझ में नहीं आता है लीस्ट और मोस्ट कैसे, उसी चीज क्या कैसे हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है जो विरोधास्पद बताया जाता है जिससे कि जो और गुण तत्व है उसकी ओर ध्यान दिया है हमारा। तो इसलिए शास्त्र क्या करते हैं कभी कभी निर्गुण और सगुण दोनों को साथ साथ कभी बोल देते हैं। तो जीव गोस्वामी अपने भागवत संदर्भ में उदाहरण देते हैं कि वह जब भगवान को प्रार्थना करते हैं गजेंद्र, आठवें अध्याय आठवें स्कंद में, आठवें स्कंद के तीसरे अध्याय में गजेंद्र प्रार्थना करते हैं भगवान को कि हे प्रभु मुझे आप वो प्रार्थना परम सत्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपया मुझे बजाना जाओ न नाम रूपे गुण दोष नहीं क्या है नाम रूप गुण दोष एवोकाप्य नहीं तो दसवें स्कंद का श्लोक है। तो यहाँ पे श्लोक तो प्रार्थना में श्लोक नहीं याद आ रहा है मुझे, पर वो जो प्रार्थना जब बता रहे हैं तो उसमें कई प्रार्थना ऐसे वो ऐसे किसी निर्विशेष निराकार किसी व्यक्ति को वो पुकार रहे हैं ऐसे लगता है। तो इसमें एक तस्मै नमः परेशाय नमः आश्चर्य कर्मणे अरूपाय उरूपाय, तो कहते अरूपाय हे प्रभो जो परम सत्य है जिनका कोई रूप नहीं है मैं उनको प्रार्थना कर रहा हूं। तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि गजेंद्र प्रार्थना कर रहे उस परम सत्य को कि जिसका कोई रूप नहीं है, पर उस प्रार्थना के जवाब के रूप में एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसका रूप है, तो क्या हो गया, मतलब किसी एक को प्रार्थना के दूसरा आ गया है क्या, नहीं ऐसी बात नहीं है। जी गोस्वामी कहते हैं मतलब क्या है कि यहाँ पर जब गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं तो वह बता रहे हैं कि वह परम सत्य कैसे भौतिक गुण नहीं है उसका वर्णन हो रहा है, और जो परम सत्य प्रकट हो रहे हैं उनके जो गुण है वो आध्यात्मिक गुण है। तो इसलिए जब इस तरह से अरूपाय उरूपाय उनका कोई रूप नहीं है, उनके अनेक रूप है, तो इस तरह से विरोधास्पद जब आता है तो उसका उद्देश्य क्या है कि हम और घूर जाए। तो मतलब क्या, उनका कोई भौतिक रूप नहीं है और उनके अनेक आध्यात्मिक रूप है। तो इसी तरह से सर्वे इंद्रिय विवर्जितम यहां पर बताया गया, क्योंकि सारे इंद्रिया, उनको कोई इंद्रिया है ही नहीं, मतलब क्या है कोई भी भौतिक इंद्रिया नहीं है उनके, पर उनके आध्यात्मिक इंद्रिया है, और आध्यात्मिक इंद्रिया जो है सब जगह पे है, और वो सब जगह से वो सब ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ठीक उसी तरह असत्तम सर्वभृक्षैव, साधारणतः हम किसी का पालन करते हैं, माता पिता अपने पुत्र का पालन करते हैं, तो फिर क्या होता है उसके आसक्त हो जाती है कि ये मेरा है, मेरे लिए उसे कुछ करना चाहिए। माता पिता का छोड़ा, हम भी किसी को प्रचार करते तो हम उसे आसक्त हो जाते हैं। तो क्या होता है कि ये मेरा आदमी है, तुम उसको टच मत करो। तो क्या है, हम भी आसक्त हो जाते हैं, पर क्या है यहाँ पे असक्त सर्वभूत चाहिए, भगवान सबका पालन करते हैं पर आसक्त नहीं होते। संस्कृत में दो शब्द है आसक्त और असक्त, उनका अर्थ पूरा विरोध है। आसक्त मतलब कि जो भक्ति बहुत तीव्रता से वो उसमें बद्ध हो गया, असक्त मतलब कोई आसक्ति नहीं है। तो निर्गुण गुण भोक्त, उस तरह से वह गुणों के परे है फिर भी वो गुणों के स्वामी है। गुण भोक्तृ मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं कि भौतिक चीजों का भोग करते हैं, पर सारा भौतिक चीजों का जो कार्य हो रहा है वो उनके अधीनता में हो रहा है, उनके निरीक्षण में हो रहा है, उनके आदेश के अनुसार हो रहा है। तो इस तरह से जो विरोधास्पद श्लोक है उसका हम अर्थ समझ सकते हैं। तो वही अभी विरोधास्पद जो है उसके बारे में आवाज चलेगा, बहिरंतश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। बहिर अंतश्च भूतानां, सबके अंदर भी है बाहर भी है। कैसे है, सबके अंदर वो परमात्मा के रूप में है और सबके बाहर जो है वो क्या है, बाहर भी सब जगह भी परमात्मा के रूप में है, वो हर एक वस्तु में है। और ऐसे ऐसे भगवान का विराट रूप जो है वह भी है और सबके बाहर वो आध्यात्मिक जगत में भी है। बहिर अंतश्च भूतानां, तो वास्तव में जो तत्वज्ञान है उसमें भगवान की दो संकल्पनाएं हैं कि क्या भगवान निसर्ग के अंदर है या निसर्ग के बाहर है। तो जब भगवान निसर्ग के अंदर है उसको कहते हैं इमानेंस, और भगवान जब निसर्ग के बाहर है उसको कहते हैं ट्रांसेंडेंस। तो हम ट्रांसेंडेंटल शब्द बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसेंडेंटल का अर्थ क्या है कि भगवान निसर्ग के परे है। तो भगवान आध्यात्मिक जगत में जो है वो निसर्ग के परे है, भौतिक निसर्ग के परे है। तो कृष्णा इज ट्रांसेंडेंट बट ही इज ऑल्सो इमानेंट, वो निसर्ग के अंदर भी है, हम सबके आत्मा हम सबके हृदय में है, हर एक परमाणु अणु अणु में है। तो भगवान दोनों है, निसर्ग के अंदर भी है और निसर्ग के बाहर भी है। तो ये जो वैदिक भगवान की संकल्पना है उसको अभी थीज़म पता है आपको, थीज़म और एथीज़म। एथीज़म मतलब नास्तिकवाद, थीज़म मतलब आस्तिकवाद। तो आस्तिकवाद के भी अलग अलग भाग प्रकार होते हैं, जैसे मोनोथीज़म मतलब एक भगवान है, पॉलीथीज़म मतलब अनेक भगवान है, पैनथीज़म मतलब सब कुछ भगवान है। सब कुछ भगवान है मतलब क्या, लोग कहते हैं कि ये पत्थर में भगवान है, चेयर में भगवान है, दीवार में भगवान है, सब कुछ भगवान है। और कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि हिंदू लोग ऐसे ही सोचते हैं, खास करके जो पाश्चात्य धर्म के लोग कहते हैं ना कि आप कुछ किसी भी हर एक चीज़ की पूजा करते हो। तो वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हम देखते हैं कि नरसिंहदेव जब प्रकट होते हैं दीवार से तब भगवान भी, तो क्या होता है कि वासुदेव सर्वमिति भगवान कहते हैं कि वासुदेव सब कुछ है। तो वैदिक संकल्पना क्या है कि गॉड इज एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज नॉट गॉड। मतलब क्या, भगवान सब जगह पे है, कैसे, सब कुछ भगवान सब कुछ है क्योंकि सब कुछ भगवान की ही शक्ति है। तो इसीलिए अभी भगवान इस दीवार में भी है, उनकी शक्ति है, यह तकिया में भी है, कुर्सी में भी, सत्य उनकी शक्ति है, भौतिक शक्ति है, उनकी आध्यात्मिक शक्ति है। तो जब प्रहलाद महाराज को पूछा गया था तुम्हारे भगवान कहाँ है, तो उन्होंने कहा सब जगह पे, कई दीवार में है, हाँ जरूर है। और जब फिर भगवान उस खंबे से प्रकट हो गए तो क्या हुआ, प्रहलाद महाराज ने उस खंबे को प्रणाम नहीं किया, भगवान को प्रणाम किया, भगवान को माला पहनाई, खंबे को माला नहीं पहनाई। क्यों, मतलब क्या है कि ऐसे नहीं कि हम सब चीजों को पूजा करते हैं, और वो भी श्लोक भी देखते हैं, सातवें अध्याय का 19वां श्लोक क्या है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। तो वहां पे क्या है, ज्ञानवान जो ज्ञानवान वो समझता है कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है, पर सब कुछ समझने के बाद जब वासुदेव सब कुछ समझता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्ञानवान सर्वम प्रपद्यते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते मतलब क्या कि भगवान सब कुछ है, मतलब क्या सब कुछ दिव्य है, पर फिर भी भगवान का स्वतंत्र अस्तित्व है। तो भगवान का स्वतंत्र अस्तित्व जो है वह हमारे हृदय का और हमारे आध्यात्मिक खोज का ध्येय है। तो इसीलिए पैंथियिज्म जो है वह मतलब सब कुछ भगवान है, यह हमारा वैदिक तत्व ज्ञान नहीं है। हमारा वैदिक तत्व ज्ञान क्या है, उसको कहते हैं पैनेंथियिज्म। पैनेंथियिज्म मतलब क्या कि एवरीथिंग इज गॉड एंड गॉड इज स्टिल बियॉन्ड एवरीथिंग ऑल्सो। सब निसर्ग जो है उसमें सब भगवान का ही एक रूप है, पर भगवान उसकी सबके परे भी है। तो जो है यहां पर बताया जा रहा है वो सबके अंदर है, बहिरंतश्च भूतानाम अचलम चरमेव, सबके अंदर है पर उसके बाहर भी है, दूरस्थम चांदिकेच तत्, वो सबके अंदर है पर सबसे दूर भी है। और यहां पे एक विलक्षण चीज बताई जा रही है, ये जो विभाग चालू हुआ तो तब बताया गया कि ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय है उसके बारे में बताऊंगा मैं। और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो ज्ञेय है वो अभिज्ञेय है, कि सूक्ष्मत्वात् अभिज्ञेयम्। तो जो ज्ञेय है, जो जो ज्ञान प्राप्त करना है उसको उसको ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि वास्तव में हम इसको पूर्णतया कभी समझ नहीं सकते हैं। भगवान को हम पूर्णतः कभी समझ नहीं सकते, पर हम भगवान को उतना जरूर समझ सकते हैं जिससे कि हम उनसे प्रेम कर सकते हैं, जिससे हम उनके उनके प्रति आकृष्ट हो सकते हैं। पर पूर्णतः जहाँ भगवान का समझना है वो नामुमकिन है, वो अविज्ञेयम भगवान है। इस तरह से उनको पूर्णतः हम समझ नहीं सकते हैं। तो जीव गोस्वामी कहते हैं संदर्भ में कि अगर कोई व्यक्ति ये स्वीकार नहीं करता है कि भगवान भगवान के अचिंत्य गुण है, तो वो मतलब क्या कह रहा है, वो कह मतलब भगवान के ऐसे कोई गुण है जो उनको मैं मेरे बुद्धि से समझ नहीं सकता। कोई कहता है कि भगवान के सब गुणों को मैं बुद्धि से समझना ही है। अगर आप कहते हो कि भगवान के ऐसे कोई गुण है जिनको मैं मेरे बुद्धि से समझ नहीं सकता, तो वह तर्क के खिलाफ है, इसलिए मैं स्वीकार नहीं करूंगा। कोई कहता है तो जो उसमें कहते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वह व्यक्ति अपने बुद्धि को भगवान बना रहा है। मतलब जो मेरे बुद्धि से समझ नहीं सकता मैं, वह भगवान के पास भी नहीं हो सकता है। मतलब क्या, मेरी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ हो गई, भगवान से भी बड़ी मेरी बुद्धि हो गई है, तो यह अनुचित है। इसीलिए अभिज्ञेय मतलब क्या है कि भगवान के जरूर ऐसे गुण होंगे जो मैं समझ नहीं पाऊंगा। तो इस तरह से दूरस्थम चांति की जत, और फिर बाद में कैसे वो भगवान सर्वव्यापी है उसका वर्णन होगा परमात्मा के रूप। अविभक्तम च भूतेषु, विभक्तम इव च स्थितम्, भूतभर्तृच तज्ज्ञेयम्, ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तम च भूतेषु, अविभक्तम उनका कोई विभाग नहीं हुआ है, पर विभक्तम इव च स्थितम ऐसे लगता है कि विवाह हो गया है। अभी आपके हृदय में परमात्मा है, मेरे हृदय में परमात्मा है, वो दोनों वास्तव में एक ही है, पर फिर भी ऐसे लगता है कि वो अलग है। अभी क्या होता है, कभी कभी हमें कोई कोई उपदेश देता है कि अगर हम अगर हम जब में बहुत सो रहे हैं तो कोई बोलता है तो आप थोड़ा जल्दी सो जाओ, आपको अच्छी नींद हो जाएगी, फिर आपको आप जब अच्छा कर सकते, हम सुनते नहीं है। फिर बाद में हमको हमको अंदर से लगता है कि हमें सुबह उठना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, चल करें जल्दी सुबह चाहिए। तो क्या होता है, अभी वही परमात्मा जब किसी और से बोलते हैं और हमारे अंदर से बोलते हैं, तो क्या होता है, जब हमारे अंदर से आते हैं तो हम उसके लिए रिसेप्टिव होते हैं, कहीं और से आते तो रिसेप्टिव नहीं होते। उसका सुझाव मैं क्यों स्वीकार करूँ, मेरा आइडिया तो मैं करूँगा सिर्फ। तो इसीलिए प्रचार का भाव कैसे होना चाहिए कि प्रचार ऐसा करना चाहिए कि व्यक्ति को लगना चाहिए मेरा ही आइडिया है। तो कैसे होता है कि अगर वो व्यक्ति को लगेगा कि ये मेरा आइडिया है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा मेरा योजना है, तो व्यक्ति उसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार कर लेगा और फिर उसके बाद में वो स्वयं कर पाएगा। तो वही परमात्मा दूसरे से भी ज्ञान दे सकता है, स्वयं से भी ज्ञान, पर हमको लगता है ये अलग है, वास्तव में एक ही परमात्मा ज्ञान दे रहा है। तो ये जब हम अभिभक्तम जो भूतेषु विभक्तम उचस्थितम, तो इसलिए कभी कभी क्या होता है जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो अगर हम देखते हैं कि अरे ये भक्त ज्यादा शास्त्र पढ़ लिया है, ज्यादा ज्ञान है इसके पास, तो कभी ईर्ष्या होने लगती है। तो हम सोच सकते हैं कि वास्तव में जो परमात्मा मुझे ज्ञान दे रहे हैं और परमात्मा उसको भी ज्ञान दे रहे हैं, और वास्तव में वो कितना ज्ञान किसी के पास है उससे कोई आध्यात्मिक प्रगति का वो मापदंड नहीं है। कितना व्यक्ति भगवान का स्मरण कर रहा है, कितना व्यक्ति के भगवान की ओर आकर्षित हो रहा है, उस पर निर्भर है वो। तो अगर मैं उसके ज्ञान को देख कर उसकी ईर्ष्या कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें भगवान का स्मरण नहीं कर रहा हूँ, और भगवान का स्मरण नहीं करूँगा तो फिर मेरी प्रगति कैसे होगी। उल्टा मैं देखूँगा कि इसका इतना ज्ञान है, भगवान ने इतनी कृपा की है इस पर, तो भगवान का स्मरण करूँगा, भगवान वैसी कृपा मुझे नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान कोई पक्षपात नहीं करते, कि जितनी सेवा करता है उसके उसके अनुसार भगवान अपना कृपा प्रदान करते हैं, तो मुझे भी दे सकते हैं भगवान। इसलिए हमें ये देखते हैं कि सबका ज्ञान जो है वह एक ही भगवान से आ रहा है, तो ईर्ष्या भाव से मुक्त हो सकते हैं। और फिर भूत भद्र चतुर ज्ञेय, अभी यहाँ पे क्या है, जो भौतिक प्रकृति के तीन स्तर होते हैं या तीन परिवर्तन होते हैं, क्या होता है निर्मिति, व्हाट इज मेंटेनेंस, पालन और ह्रास विनाश। तो यहाँ पे भगवान बता रहे कि मैं ही तीनों करता हूँ, भूत भर्तृ च तज्ञेयम् गसिष्णु प्रभविष्णु च, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही निर्मिति करता हूँ और मैं ही विनाश करता हूँ। अभी ये मैं विनाश करता हूँ ये समझना थोड़ा महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि एक दो साल पहले जो रशिया में कोर्ट केस हो गया था भगवद्गीता के खिलाफ, और वो कोर्ट केस हो गया था कि भगवद्गीता ये बहुत ही खतरनाक किताब है, इसको इस पर बंदी लानी चाहिए। तो उसमें वहाँ पर जो लोगों ने किया था वो कुछ क्रिश्चियन संस्था थी उसके पीछे थी, तो उन्होंने क्या किया था, उन्हें भगवद्गीता के 11-10 श्लोक बोले, और कैसे बोले कि वो जो श्लोक है विश्वरूप है ना, विश्वरूप उसके सारे मुंह में सारे योद्धा जा रहे, और फिर लेली से क्या जब जा रहे चूड़ित उत्तम आंग गई, उसके जो दांत है कट रहे, दांतों में टक्कर हो रही है सारे योद्धाओं के, उनके सिरों की, और उसे टूट जा रहे हैं, और फिर जो उसे खून बह रहा है तो फिर वो जो विराट रूप है और खून चाट रहा है, ऐसे वर्णन आता है वो। तो उन्होंने इस श्लोकों को लिया और कहा कि ये हिंदू लोग है ये ऐसे मानवों का भक्षण करने वाले और उनके खून को पीने वाले भगवान को पूज रहे हैं, क्या हम हमारे देश के महान संस्कृति का विनाश करना चाहते हैं ऐसे भगवान की पूजा करने के, तो ऐसे धर्म के ग्रंथ को बंदी कर देनी चाहिए। तो अभी कोई इस तरह से बोला था तो भयावह लगता है कि भगवान किसी का खून पी रहे। तो वास्तव में क्या है कि वो 11वें अध्याय में एक आध्यात्मिक तत्व दर्शाया जा रहा है। सबसे पहले महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे कोई जैसे कोई वैकुंठ में अयोध्या का धाम है, या वैसे ही कृष्ण का धाम है, विष्णु का धाम है, वैसे कोई वैकुंठ में विराट पुरुष लोका नहीं है। तो विराट पुरुष जो है वह एक दर्शन है, वह कोई शाश्वत तत्व नहीं है जो हमेशा कहीं रहता है, वह भगवान एक तत्व को समझाने के लिए एक दर्शन दे रहे हैं। वो तत्व क्या समझा रहे हैं, वो कि इस भौतिक जगत में जो भी है वो भगवान के अधीन ही है। तो इस भौतिक जगत में क्या होता है, निर्मिति होती है, पालन होता है, ह्रास होता है, तो वह सब भगवान के अधीन ही होता है, तो विनाश भी भगवान के अधीन ही होता है। तो यह समझा जा रहा है। और सबसे पहले तो हमारी संस्कृति है कि विनाश ये कहीं भगवान के नियंत्रण के परे नहीं है, भगवान के नियंत्रण के अधीन ही विनाश भी होता है। कुछ कुछ धर्म कहते हैं, उनको पूछते हैं कि अरे इतने ये सुनामी क्यों आता है, भूकंप क्यों आता है, भगवान ऐसे क्यों होने देते हैं, तो कहते हैं वास्तव में भगवान इस दुनिया का नियंत्रण करते ही नहीं है। क्या मतलब, बोले इस दुनिया का नियंत्रण शैतान करते हैं, इसे शैतान ही सारा विनाश करवाते हैं। और वो कहते हैं कि जब भगवान एक अंत में अनेक सालों के बाद भगवान और शैतान में एक बड़ा युद्ध हो जाएगा, और तभी भगवान शैतान को हरा डालेंगे, उसको मार डालेंगे, और फिर तभी इस दुनिया में कोई दुख नहीं होगा और तभी सारा कल्याण हो जाएगा। और वह जो उसको जजमेंट डे कहते हैं, वो क्या है कि उस समय सारे लोग जिन्होंने भगवान में श्रद्धा रखी है, भगवान श्रद्धाएं रखी है, उन सबका निर्णय किया जाएगा, जिन्होंने भगवान श्रद्धाएं रखी है उनके भगवान की श्रद्धा मतलब जीसस क्राइस्ट में श्रद्धा रखी है, तो वो सब हमेशा के लिए नर्क में चले जाएंगे, और जो इन्हें श्रद्धा रखी वो हमेशा के लिए और भगवान के धाम में चले जाएंगे, ऐसे उनकी संकल्पना है। तो क्या है ये जजमेंट डे जो है वो अभी तक 230 बार आके चला गया है। मतलब वो बोले कि अभी 1878 के 16 अगस्त को जजमेंट डे आने वाला है, उसके पहले जीसस के शरण में आ जाओ। तो 16 अगस्त आ गया और चले गया, जीसस इतना कृपालु, उन्होंने और समय दे दिया। तो ऐसे अभी तक 230 बार हो चुका है। तो यह क्या है वास्तव में, यह जो भाव है, यह ऐसे जो अपूर्ण तत्व ज्ञान जब होता है तो वो समझ नहीं पाते कि ये भौतिक जगत में विनाश क्यों होता है। तो क्या है, भौतिक जगत में जो कृष्णा डिस्ट्रॉयज द टेम्पररी टू मेक वे फॉर द इटर्नल, भगवान को विनाश करने का कोई रुचि नहीं है, पर जो अशाश्वत है उसके विनाश के द्वारा शाश्वतता की ओर हमारी चेतना जो है आकृष्ट करे। तो इस भौतिक जगत में जो विनाश होते रहता है उससे हम दिखा रहे विनाश हो जाता है, तो शाश्वत क्या है उसकी ओर हमारी चेतना धीरे धीरे आकृष्ट होती है। और विशेष करके जो विराट रूप का जो दर्शन है, ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च, ग्रसिष्णु मतलब मैं ग्रहण करता हूँ, प्रभविष्णु मतलब मैं निर्माण करता हूँ। तो ग्रसिष्णु जो है ना वो थोड़ा खतरनाक लगता है, तो इसलिए हम इसको हमें प्रभविष्णु स्वामी नाम के सन्यासी थे, पर ग्रसिष्णु स्वामी सामने कोई सन्यासी नहीं। तो क्या है कि ये भगवान का विनाश का रूप होता है वो ज्यादा आकर्षक नहीं होता है, पर यहाँ पे ये भाव क्या बताया गया ग्रसिष्णु का कि इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है वो भगवान के अध्यक्षता के अधीन ही है। तो चौथे अध्याय में भगवान ने बताया अर्जुन को कि आप युद्ध जो कर रहे हो, युद्ध भी एक यज्ञ है। तो यज्ञ में साधारण यज्ञ क्या होता है, एक अग्नि होती है और अग्नि में आहुति प्राप्त की जाती है। तो ऐसे बताया था कि अग्नि जो है वो सारे देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। ऋग्वेद वर्ण आता है कि देवानाम अवमो अग्नि परमो विष्णु तदंतर सर्वदेवता, ऐसे बताया कि देवाओं में सबसे नीचे जो है अग्नि है, सबसे ऊंचे जो है विष्णु है, और उनके बीच में बाकी सब देवता है। अभी सबसे नीचे अग्नि है मतलब क्या, कैसे नहीं कि वो सबसे कम शक्तिशाली है अग्नि, पर बाकी सारे देवताओं से जो संपर्क है हमारा अग्नि के द्वारा होता है। तो जब हम अग्नि में यज्ञ में कुछ आहुति डालते हैं तो वो अग्नि स्वीकार करता है और अग्नि बाकी सब देवताओं को देता है। तो इसलिए जो अग्नि विष्णु का मुंह माना जाता है। तो यहाँ पे जो विश्व रूप के दर्शन में भगवान क्या बता रहे हैं कि साधारण जब आहुति हम अर्पण करते हैं तो वो अग्नि अपने मुंह के द्वारा स्वीकार करती है। तो ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है ये भी एक प्रकार का यज्ञ है, और इस यज्ञ में जो सारे आधार्मिक लोग हैं वो एक आहुति के रूप में अर्पित किए जा रहे हैं, और वो आहुति भगवान स्वीकार करने वाले हैं, उसका दर्शन दिया जा रहा है विराट को अपना मुंह खोल के। जब मुंह खोल के जो स्वीकार कर रहे हैं वो ऐसे नहीं है कि भगवान को किसी का खून के प्यासे है, पर वह एक दर्शाया जा रहा है तत्व कि जो विनाश है वह भी भगवान की योजना के अधीन ही है, और विशेष करके जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो विनाश हो रहा है वह एक यज्ञ के रूप में है, और यज्ञ की अभी आहुति जो है वो भगवान स्वयं स्वीकार करने वाले है, उसका आश्वासन देने के लिए अर्जुन को ऐसा दर्शन दिया गया है। तो प्रभविष्णु प्रभविष्णु च, इस तरह से भगवान संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं और संपूर्ण सृष्टि के जो भी हो रहा है उसमें वो दर्शन दिलाते हैं। तो इसके आगे जो चर्चा है हम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की
जय।
श्री प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंद।